शांति कमला नगर से जिन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर को शुरू किया है और आज बाबा के इतने बड़े प्रिंटिंग के कारोबार को जो संभाल रहे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ भाइयों में से एक आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का हम सभी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम अभी आपसे हंस रहे थे कि ये शक्तिनगर का ग्रुप है, माना आपका अपनों का ग्रुप है, क्योंकि काफी लंबा समय आप कमला नगर आदरणीय हमारे जगदीश भाई जी के साथ साथ रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि बाबा के साथ, मामा के साथ और स्पेशली हमारे जगदीश भाई जी के साथ बिताए हुए आपके जो अमूल्य क्षण हैं, ऐसे कोई अमूल्य क्षणों में जो आपके हिसाब से स्पेशल है, ऐसी विशेष बातें हमसे शेयर करें, ताकि हम सब भी चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी मम्मा बाबा समान तैयार हो जाएं, तो हमारा रास्ता और ज्यादा प्रशस्त हो जाए। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के शिकीले दे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली है, पद्मा पद्म भाग्यशाली है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें 7 बिलियन 700 करोड़ जीवात्माएं इस धरती पर विचरण कर रही हैं, उसमें से हम थोड़ों को 9 लाख कहते हैं। आज बाबा 9 लाख था मुरली में, कुछ को बाबा ने चुना, यानी कोटों में से को, और उनमें से भी आप कितने 250 आए हैं, कहाँ आए हैं, उस धरनी पर आए हैं जहां पर स्वयं शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के द्वारा कार्य किया, विचरण भी किया, कार्य भी किया, बच्चों की पालना की, उनको खिलाया पिलाया, उनसे खेल खेला, उनको बहलाया, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ व्यवहार में आते हैं, उस प्रकार से मम्मा बाबा ने बच्चों की उन्नति के लिए आगे बढ़ाया, तो उस धरनी पर आ पाए। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप 4-5 दिन तक यहाँ रहे होंगे और अपनी बैटरी को काफी चार्ज किया होगा, आत्मा की बैटरी काफी रिचार्ज, चार्ज तो हुई, फिर और ज्यादा रिफ्रेश भी हुए होंगे और रिचार्ज भी हुए होंगे, रिलैक्स भी फील किया होगा, हर प्रकार से भर के जा रहे हैं, फिर सेवा करेंगे। तो हमको बाबा ने चुना है, हम बताएं आप, जैसे ना अभी कोई वो कोई इलेक्शन होते हैं तो वो दुनिया वो चुनती है, वोटिंग होती है। यहां तो स्वयं भगवान ने हमको अपना बना लिया। अपना बना करके फिर क्या किया, कोई चीज चुनी जाती है तो क्या थोड़ा फ्रिज में रखी जाती है, वो उसको उससे कुछ काम लिया जाता है। तो एक और बड़ा भाग्य है, हम बच्चों को बाबा ने चुनकर हमारे से कुछ काम भी ले लिया, किसी कार्य में लगा दिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य आप सभी को। देखो भले कोई घर गृहस्थ में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या समझते हैं कि यह हमारा काम नहीं, ये बाबा का काम है। जो भी किसी कार्य में भी है, चाहे सेवा में है, चाहे सेंटर पे है, चाहे कोई किसी भी कार्य में लगा हुआ है, पहले हम क्या अंदर दिल में लाते हैं कि ये स्वयं बाबा मेरे से करा रहा है। हम तो समझते हैं, आप भी समझते होंगे, ये किसका कार्य है, भले किसी भी काम में है। तो देखिए हमें बाबा ने किसी कार्य में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, ये बहुत बड़ी और ही सौभाग्य है। हमें भी आज से 58 वर्ष पहले बाबा ने अपना बनाया, अपना चुना, और हम तो पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, 1957 की बात है, कईयों का जन्म नहीं हुआ होगा तब, 1957 की बात है जब हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग में पटियाला में। तो बाबा का ये ज्ञान मिला, पहले बड़ी भक्ति की थी छोटी उम्र में ही। याद है मुझे मंदिर में जाके 6 साल की आयु में एक टांग पर खड़े होके वो ध्यान करते थे, राम राम जपते थे, तब तो कुछ पता था नहीं। तो क्योंकि भाई मम्मी भी ध्रुव की माफिक वो साक्षात्कार हो जाए, ये इसी इच्छा से। लेकिन धीरे धीरे भक्ति खत्म होती गई, क्योंकि आगे बढ़ते गए और जो यहाँ के धर्म के ठेकेदार हैं उनको देख करके थोड़ा किनारा होता गया। तो ऐसे इंजीनियरिंग कार्य में पढ़ रहे थे, भले कितनी भी कोई सहूलियत सबको हो, हम सभी दुनिया में देखते हैं, तन ठीक हो, मन ठीक, धन भी ठीक हो, सब फैसिलिटीज भी हो, सब साधन भी हो, लेकिन इंसान के मन में कुछ मिसिंग होता है, समथिंग मिसिंग। अभी भी दुनिया को देखो आप, बड़े बड़े धनाढ्य हैं, बहुत बहुत कितने कितने लोग हैं, बड़े बड़े हेल्दी हैं, सब कुछ है, समथिंग मिसिंग। तो वो जो लिंक है मिसिंग, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता। कल एक परसों में वहां इंजीनियरिंग का भाषण था, वहां पर थे, चार चीजें बताई उसने, एक बहन ने बताई, उसने एक्सप्लेन किया। एक है फिजिकल भी ठीक है, मेंटल भी ठीक है, सोशल भी ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल जो है एस्पेक्ट वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे डाउन होता जा रहा है। इसी प्रकार से हम भी भले सब कुछ था, इंजीनियरिंग में पढ़ते थे कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ कमी थी, कुछ चाहिए था ऐसा लगता था। तो हम आरएसएस में जाते थे, वहां भी खेल कूद के आते थे। तो हमारे साथ जो भाई था एक दूसरा, ओम प्रकाश, जो अभी इंदौर में है, उसको 6 मास पहले ज्ञान मिला था अम्बाला में, और वो हमारे यहां पर आए पढ़ने के लिए। तो वो चाहते नहीं थे, क्योंकि ऐसा लगता था उस वक्त भी कि विनाश कोई बहुत दूर नहीं है, जैसे अभी लगता है ना, विनाश सामने खड़ा है, सिर पे खड़ा है। बाबा रोज मुरली में कहते हैं बच्चे, ये तभी भी यही था, और कोई ना कोई ऐसी चीज होती थी जिससे लगता था विनाश सामने खड़ा था। उस वक्त 1957 था, हम सोचते थे 1857 में पहले वही थी भारत की फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस वार, अब फिर होने वाली है, फिर कुछ होगा, स्वेज कनाल की और इसराइल की, ये सब समस्या तब भी थी, लगता था अभी हुआ कुछ। एवरी जब से बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया, तब तो दुनिया में ऐसे ही बेचैनी रही और कुछ ना कुछ लगता था। तो उनको भी इच्छा नहीं थी पढ़ने की, लेकिन बाबा ने स्पेशल उनको पत्र लिखा, बच्चे तुम जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे आत्मा इंतजार कर रही है ज्ञान सुनने के लिए। यानी बाबा के जबरदस्ती कहने पर वो ज्ञान पढ़ाई करने के लिए आया। हमें हम उनसे हमारे कमरे साथ साथ थे, उनका 112 हमारा 113, वो बिल्कुल साइलेंट था, ना किससे बोलना ना बात करना, कमरा हमेशा बंद। वो हम कहते थे क्या बात है, क्यों ये किससे बात नहीं करता, ना कॉमन रूम में आता है, ना किसी खाने पीने में आता है, पूछा है क्या बात है। हमें थोड़ा उससे अट्रैक्शन होती थी, हम उस दरवाजा खुलवाएंगे तो 5 मिनट लगा देगा दरवाजे खोलने में। हमने कहा क्या तुम्हारे हीरे मोती पड़े हैं, तुम जल्दी क्यों नहीं खोलते, क्या बात है, व्हाट इज द रीजन। वो क्या था, अपनी मुरलियां वगैरह छुपा कर तक्के में रखता था और किताब और लिटरेचर रखता होगा ताकि भाई मैं तो उनको ज्ञान दूं जो कि वो होता है कोई नरम जगह हो, ऐसे लोगों को ज्ञान दूंगा मेरे हंसी मजाक कर देंगे, तो वो ये देना चाहती नहीं थे। तो हमने उसने एक दफा मेरे पास एक किताब देख ली, हमारे कमरे में आए, वो गीता वो मिलती है ना, वो छोटी सी गीता गोरखपुर की, मुझे वो इनाम में मिली थी, हम फर्स्ट आए थे अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो उसने देखी, उसने कहा ये जरूर धार्मिक आदमी है, हमने पढ़ी भी कभी नहीं थी वो गीता। तो हमने कहा अच्छा भाई, उसने फिर देना शुरू किया ज्ञान, पहला लेसन जो होता है आप आत्मा है। कई दिन तक वो कहता रहा आप आत्मा है, हमको हम आत्मा नहीं है, गो ऑन डिस्कसिंग एंड डिस्कसिंग। वो कह आप आत्मा है, शीर छूटता है, मिट्टी हो जाता है ये। मैंने कहा तो सारी बात है, ये मशीनरी है, एक भी पुर्जा फेल होगा, कोई भी मशीनरी में पुर्जा होता मशीन रुक जाती है, तो ये भी मशीनरी है, आप कैसे कहते हैं आत्मा चेतन है ये है। बड़ी डिस्कशन करते रहे, 7 दिन तक चले, लगे रहे वो भी, लगे रहे हम भी लगे रहे। तो उस दिन एक दिन उसने आगे एक दिन कह दिया भाई आज आप मान जाओ, हम अंदर से मानते थे कि हम आत्मा है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो आत्मा को मानते हैं, आया तो जरूर। अच्छा उसने कहा आप आज मान जाओ कि आप आत्मा। अच्छा मैंने कहा जी आज ठीक है मैं आत्मा हूं। बस ऐसा कहते ही मुझे अनुभव होना शुरू हो गया, हम बताए आपको, बस मैंने लिखना शुरू कर दिया आई एम सोल नॉट बॉडी, अपनी जो भी जगह मिले अलमीरा पर इधर टेबल पर इधर जहां लिखता रहूं आई एम सोल नॉट बॉडी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस बहुत था, तो अपने को सोल कॉन्शियस करने के लिए राइटिंग अच्छी होती है। तो लिख रहा दीवार पर भी लिख दिया, जो भी जगह मिलती थी मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, आत्मा हूं शरीर, ऐसा लिखना शुरू कर दिया, अभ्यास होना शुरू हो गया, तो कमाल हो गया, शांति का अनुभव, एकदम अनुभूति होनी चालू होगी। क्योंकि उन दिनों में बच्चे बहुत कम थे और बाबा को बच्चों की दरकार भी थी, बाबा फ्री थे तो जल्दी पकड़ लेते थे ऐसा, हम बताए आपको, तो ऐसा पकड़ लिया बुद्धि को, बात मत पूछो, हम जहां भी जाए ये भी आत्मा है, बाजार में जाए तो उनकी मस्तक में देखो, उस वक्त तो होता था अंगोष्ठ सदृश, उस बिंदु रूप की बात अभी नहीं निकली थी, आत्मा ये बिंदु रूप है नहीं था, अंगोष्ठ सदृश है, सबको आत्मा आत्मा देखना शुरू कर दिया, तो दृष्टि वृत्ति सब एकदम प्योर हो गई। ऐसा चेंज आया कि बात साइलेंस हो गए, जो हमारे स्टूडेंट्स थे हमें देखे इसको क्या हो गया है, हम वहां सर्वेइंग करते थे किसी से बात नहीं करना, सबको आत्मा देख के चलना अपनी साइलेंस में। तो वो कहने लगे ये क्या आपको तबीयत आपकी ठीक है, क्या आप दिमाग आपका ठीक है, वो क्या क्या है, उस वो कहते थे आइदर द बीस्ट आर द सेंट लिव इन जंगल, बीस्ट रहते हैं या सेंट रहते हैं जंगल में। मैंने कहा आई एम नॉट बीस्ट बट आई एम गोइंग टू बी ए सेंट। सबसे दोस्ती खत्म हो गई, जो हमारे मित्र थे दोस्त थे होटल वाले थे ये थे सबसे छूट गया फटाफट, 2-3 दिन में इतना चेंज आ गया, मैं तो कमाल कह रहा था, वो भी भाई कहे ये कमाल है, मुझे भी लगे बहुत कमाल हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो मैंने कहा सुनाओ मुझे और भी तुम्हारे पास ज्ञान है जल्दी जल्दी सुनाओ, 2-3 दिन में ज्ञान सारा सुन लिया, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है राम कौन है रामन कौन है शंकर कौन है सारी बातें 2-3 दिन में, कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी हमारा क्वेश्चन नहीं था, गीता का भगवान कौन है, सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का है, सारी बातें ऐसे फिट हुई कोई प्रश्न नहीं उठाया। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा, आप देखिए हम रामायण पढ़ते थे पहले, कितना वंडरफुल बाबा का ज्ञान है, हम तो ज्ञान से है किसी के प्रेम प्यार से, दादियों के दीदियों के उस वक्त तो भी मिले नहीं थे, किसी के प्रेम प्यार से ज्ञान से है। अब आप बताइए कितना वंडरफुल हमारा ज्ञान है, बताइए कि सारा हम रामायण लोग करते हैं रामलीला करते हैं, रामलीला मैदान में है, सोनिया गांधी आएगी नरेंद्र मोदी आएगा उद्घाटन करेंगे, इतनी बड़ी कथा करते हैं रामायण करते हैं, वो जलाते हैं हनुमान उड़ा, वो कितनी कितनी बातें हैं, और बाबा ने क्या कहा, एक शब्द बोला, एक सेंटेंस क्या बोला बताओ इस रामायण के बारे में, बोलो रावण ऐसा था ही नहीं। अब बताइए दुनिया इतनी मानती है रोती है रामायण को देख देख के, और बाबा ने एक झटके में कह दिया रावण तो ऐसा कभी था नहीं, ना ऐसी कोई लंका थी, ये 5 विकार नर में और 5 विकार नारी में सारी रामायण खत्म कर दी। बताइए आप, यह ऑलमाइटी अथॉरिटी की बात कोई कह सकता है इंसान, कहें तो झगड़ा करना शुरू कर दे लोग। भगवानों वाच कि रावण तो ऐसा था नहीं, ना ऐसी रामायण हुई, ना ऐसा कोई रावण था, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात, बाबा कहते आप सीता हो, हम सीता हैं, हम लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो रावण पांच विकार उठा के ले जाता है अपनी अशोक वाटिका में, बाबा शोक वाटिका में उठा लेता आता है, फिर राम आता है हम उसको याद करते हैं तो हमें उठा करके छुड़ा कर कहां आता है, अयोध्या जहां युद्ध का नाम निशान नहीं, सतयुग। ये है सारी कहानी। और दुनिया क्या क्या कर रही है, सारा पहाड़ उठा के लाया हनुमान, बताइए कितनी बात है। बंदर सेना ली और बाबा ने कहा बंदर तुम आप ही बंदर जैसे बन गए, तुम्हारी सेना लेकर के मैं नई युग नया उसकी स्थापना कर रहा हूं। जब ये बात सुनी कपाट खोल गए हमारे, तो कौन कह रहा है। आप दुखी महाभारत की बात सुन लीजिए, बाबा क्या कहते हैं, ये महाभारत तो अंदर का गीता का ज्ञान तो श्री कृष्ण ने दिया ही नहीं, आप बताओ। सारी दुनिया मानती है, ठीक है ना, आप भी मानते हैं ना, सारी दुनिया मानती है गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। शिव भगवान वाच गीता ज्ञान मैं सुनाने वाला हूं, अब सुना रहा हूं। कभी द्वापर में युद्ध हुआ नहीं, द्वापर के अंत में महाभारत में खत्म। अब आप बताइए ऐसी ज्ञान सुनकर के, इतनी ऑल माइटी बाबा के वर्षन सुनकर के क्या क्या समझ आया। और कितनी बातें, लोग कहते हैं 32 कितने लाख कितने हजार वर्ष का चक्कर है, बाबा कहता है नहीं केवल 5000 वर्ष का चक्कर है। सिंपलेस्ट बात, बहुत इजी बात है, आज तक किसी ने कहा। अब साइंस प्रूव कर रही है कि हाँ ये 5000 का ये होता है, कई कई प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज 5000 ईयर्स ओल्ड, और फिर हूबहू रिपीट होता है। आप बताइए ये बात किसी ने नहीं कही, कौन कह सकता है जो त्रिकालदर्शी है। इसके बहुत आर्गुमेंट्स हैं, हमारे भ्राता जगदीश जी बहुत देते थे, प्रूव करते थे कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। भले अभी हम कोई पूछे तो शायद घबरा जाए, कुछ ना समझा सके, लेकिन हमारी अंदर दिल में बैठा हुआ है कि ये 5000 वर्ष का चक्कर और हूबहू रिपीट होता है, इट रिपीट्स इटसेल्फ। सृष्टि तो अनादि है परंतु उसमें जो साइकिल है केवल 5000 वर्ष का। ये बात सुनी, क्योंकि हम पहले गीता पढ़ते थे, हे अर्जुन हम पहले भी थे अब भी हैं फिर भी मिलते रहेंगे, इट मीन्स वी आर रिपीटिंग। अभी हम पहले बैठे हैं, पहले भी मिले थे आप भी मिले, कितनी कितनी बढ़िया और कितनी दिमाग खोलने वाली बातें हैं। जब ये ज्ञान सुना, शंकर कौन है, शिव ही परमात्मा है, आत्मनिराकार है, सब बातें सुन के इतना अच्छा लगा, कमाल। मैंने 2-3-4 दिन में सारा ज्ञान सुन दिया और निश्चय हो गया कि ये ज्ञान कोई साधारण ऋषि मुनि महात्मा का नहीं, ये स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो हमने कहा फिर मिलना चाहिए उनको, तो उन्होंने कहा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान दे रहे हैं, मैं मिले हम उनको जल्दी से मिले। फिर हम चल पड़े मिलने के लिए, हमने कहा हमें अभी इतना पता भी नहीं था भाई बाबा से कैसे मिल रहे हैं, मम्मा से कैसे मिल रहे हैं, नए नए थे, चले मिलने बाबा मम्मा से मिलने। रजौरी गार्डन में पहुंचे हम, तब बाबा रजौरी, तब हर सर्दियों में बाबा रजौरी गार्डन या बॉम्बे या कहीं जाया करते थे, या कानपुर या लखनऊ आते थे, तब की बात है 1957 की बात है ये। तो आया बाबा मां से मिलने के लिए, 11 बजे पहुंचे रजौरी गार्डन में, नए नए फर्स्ट टाइम आए थे दिल्ली कैपिटल में, 11 बजे पहुंचे बाबा के पास। तो वहां के एटमोस्फेयर को देख करके पहले खिंचावट हो रही थी, एक भाई अविनाशी भाई थे, उसने बैठ के योग कराया रात को 11 बजे में, चलो सोने से पहले उड़ा दिया उसने, जैसे कि बहुत योगी आदमी थे वो। तो सवेरे बाबा मामा से मिले, मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं, सवेरे बाबा मामा से मिलने का मौका मिला जब क्लास के बाद। ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ, ऐसे जैसे कि फरिश्तों से हम मिल रहे हैं। व्हाइट वैसे थे, कपड़े व्हाइट, सब चीज व्हाइट, चादर एवरीथिंग वॉज व्हाइट। तो ऐसे लगा हम जैसे कि अपने लोग, अपने माता पिता, अपने यही हमारे रियल माता पिता हैं, उनसे मिल रहे हैं और वो फरिश्ते देखने में हमको है। और कैसे मिलने हमें पता नहीं था, तो हम सीधे ही आंसू बहाते बहाते बाबा की गोद में गए, फिर बाबा ने मम्मा की गोद में भेज दिया, तो टोली खिलाई जैसे होता है। फिर देखो बाबा के महावाक्य, भृगु ऋषि मिलने के बाद बाबा ने क्या कहा, बच्चे हम इंजीनियरिंग पता है, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये देख लीजिए, ये जो तुम पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग, क्यों, बाबा को निश्चय था। देखो बाबा के अभी थोड़े दिन मुरली में एक बाबा के महावाक्य थे जबरदस्त, क्या कहा बाबा ने, बच्चे मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था तो छोड़ दिया, राजे रजवाड़े भी छोड़ दिए, अपना जो मकान जो कुछ था तन मन वो सब कुछ उसमें ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, सारे परिवार को भी ज्ञान में लाया। उस वक्त सारे परिवार में लाते थे, यानी उसके लड़के भी, बाबा के, बाबा की बहू भी ब्रज शांता, बाबा की लड़की भी निर्मल शांता, सभी को ज्ञान में लगाया। और वो राज रजवाड़ों को भी जो जिनसे कनेक्शन था वो भी तोड़ दिया। बताइए, फिर कहा मैं क्यों किया, ऐसा सोचा क्यों किया, बताओ बाबा ने ऐसा क्यों किया, बताओ आप बताओ। बाबा ने जवाब दिया अपना है, है? बाबा ने कहा इसलिए किया कि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए, ये महावाक्य बाबा के, इसलिए किया। भल सब कुछ करने के बाद फिर मुझे विचार आया, ओहो ये तो राजधानी स्थापन होनी है, इसमें तो समय लगेगा। ब्रह्मा बाबा को थोड़ा पता था ये बात क्या होने वाला है, शिव बाबा जो है वो राजू रमस बाग तो है, वो उसने बाबा से समर्पण करा दिया, सब कुछ समर्पण करा दिया। उसके बाद बाबा ने अपने हाथ में कोई पैसा रखा नहीं, कभी नहीं। हम आते थे कभी, होता ना मदोगरी देते हैं ईशु दादी, कभी हाथ में रखता था ने लिया आज तक कभी, तो क्यों कहा, क्योंकि वो अगर चाहता तो चलो बिजनेस चलता रहे, उससे पैसे आते रहेंगे, यज्ञ चलता रहेगा। कई ऐसे करते ना भाई, फिक्स डिपॉजिट कर दो उससे आए खाते रहेंगे चलता रहेगा, बाबा ने कभी फिक्स नहीं कहा, खिलाफ थे। तो कहने का मतलब है कि बाबा ने इसीलिए ये सारा पुरुषार्थ किया, याद तो किया परंतु इसलिए क्या कि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए सिवाय शिव बाबा के। ये देखिए, तो देखिए अंत में क्या हुआ, कुछ याद ना, कोई लौकिक था, बस अलौकिक भी एक दादी थी, दादी को हाथ दिया उड़ के चले गए। तो ये है कर्मातीत अवस्था की निशानी। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर वो अगर अगला पार्ट था बाप समान कैसे बने वो ठीक है, परंतु पहला स्टेप तो ये है, जब हमें सोचा कि भगवान आए हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, रियलिटी इट इज नॉट, अतिशोक्ति नहीं है, गॉड हैज कम, वो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। आप बताओ स्थापना नहीं हो रही, 25,000 हमारी बहनें, सोचो विचार करो, 25,000 सिस्टर्स कन्याएं सब जगह सेवा कर रही है सारे वर्ल्ड में, लाखों भाई बहन पवित्र रह करके इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जब आए थे तो केवल 400-500-600 बड़ी मुश्किल थे, हजार होंगे सारे, आज 9 लाख। पहले बहने कितनी थी अब कितनी, 25,000 बहने हैं, कन्याएं कुमारियां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये सारा कार्य कर रही है, कौन कर सकता है ये विचार करो। सारी हिस्ट्री में पहला एग्जाम्पल है ये, बहनों द्वारा कार्य किया जा रहा है मातृशक्ति द्वारा। तो ये आप देखा हमने भाई, तो स्वयं भगवान के कोई कर सकता नहीं, तो बताइए जिसको ये निश्चय हो जाए स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, ये हैज कम, और नई दुनिया आएगी पुरानी दुनिया जाएगी, तो उसे क्या करना चाहिए। जब मुझे निश्चय हो गया परमात्मा पढ़ा रहा है, ही हैज कम, वो ज्ञान दे रहा है, तो बाबा ने कह दिया ये पढ़ाई तुम्हारे काम भी नहीं आएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए था तब, आप बताइए। आपको भी जो अगर आपको निश्चय है ना सबको, तो गॉड हैज कम एंड ही इज री एस्टेब्लिश द न्यू वर्ल्ड, तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। तो तभी मैंने निश्चय किया कि जो बाप, ये शब्द जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य, तभी से। तो हमने जब बाबा से मिलजुल करके गए तो एक और मम्मा से बात हुई, थोड़ा मम्मा बाबा के अनुभव है ना, हम मम्मा से अब जब क्लास के बाद पैदल चलते हैं ना, वहां देखा कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई टोली खा रहा है, कोई वहां भंडारी नहीं थी, अभी तो भंडारी रखते होंगे यहाँ वहां, वहां भंडारी नहीं थी, ना कोई किससे मांगता था, ना कोई इशारा भी करता था। अब तो आजकल तो इशारा करते हैं, मकान बनना है तो सब करें, ये करें वो करें, भंडारी रखे सब रखते हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने मम्मा से पूछा, उस वक्त मम्मा बाबा जैसे दीदी दादी ऐसे होते हैं ना, मम्मा से पूछा मम्मा ये कहां से आ रहा सारा पैसा, वेयर फ्रॉम इट इज कमिंग, तो बताओ मम्मा ने क्या जवाब दिया, मम्मा ने ऊपर इशारा, इधर ऐसा इशारा कर दिया, कुछ नहीं बोला, तो ऊपर से ही आता है देखो, कैसे ऊपर से आता है। फिर मैंने सोचा ऊपर से ये भोग लगाने की बड़ी रस्म थी। हमारे पटियाला में एक दादी आती थी, ध्यानी दादी, वो भोग लगाती थी, कभी हाथ ऐसे करके फल देती थी, कभी फूल देती थी। तो मैंने कहा ये भी पैसे भी ऊपर से आते ही होंगे शायद। फिर कोई मांगता तो कोई किससे है नहीं, रियली। फिर बाद में वो सुनाया कि मैंने ये तो सब मिलजुल के करते हैं। तो देखो कितना, और आता भी ऊपर से है, ऊपर वाला टच करता तो भाई बहन देते हैं ज्ञान में, यज्ञ में डालते हैं। तो बाबा का तो, मम्मा का तो कितना स्टीक और कितना रॉयल जवाब था। वो ये भी नहीं कहा कि कोई कौन करता है, लेकिन ये भी बताया ऊपर से आता है। इस प्रकार से बाबा मम्मा की पालना लेते हुए बार बार बाबा मम्मा से आए। फिर एक दफा कमला नगर में मम्मा आई थी, वहां मिले, मिलते रहे, आते रहे, करते रहे। और फिर हमने बाबा को लेटर लिखा इंग्लिश में एक दफा, और बाबा ने उसका इंग्लिश में जवाब दिया। फर्स्ट, माई फर्स्ट लेटर बाबा को लिखा, बाबा आई डोंट वांट टू डिजाइन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग। एक बहुत बड़ा जो महल आप बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं सचयुगी, उसमें एक छोटा सा पत्थर मैं बनना चाहता हूं। फिर कहा आई डोंट वांट टू डिजाइन ये रोड्स एंड हाईवेज, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन कमिंग टू गोल्डन एज। फिर मैं कहा आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द किंग एंड क्वीन मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। बाबा कहते ना हमेशा ये ब्रह्मा कुमारी जो है ये किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। तो बाबा का बहुत सुंदर जवाब आया, बहुत लंबा चौड़ा पत्र, विद इन टू डेज थ्री डेज रजौरी गार्डन से आया होगा शायद। चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर पेरेंट्स। ये बाबा ने डायरेक्शन दे दिया। तो हमें भले और बातें ना मानी हो बाबा की, भाई निरंतर याद करो, 8 घंटे याद करो, वो तो नहीं हो सका, परंतु जो बाबा लिखते थे, जो बाबा डायरेक्शन देते थे स्थूल, उसको तो हम मानते ही मानते थे। तो खूब हमने ज्ञान देना, अपने जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उनको ये ज्ञान देने की कोशिश की। और एक वो वक्त गीता छपी थी, रियल गीता, उसमें पता क्या टॉपिक्स होते थे, कोई आज वाले आजकल वाले जो टॉपिक्स हैं योग के अनुभव, ये वो चीजें नहीं होती थी। पहला पेज खोलो, उस वक्त मैगजीन भी थी त्रिमूर्ति मैगजीन, खोलेंगे क्या लिखा होगा, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। दूसरा खोलो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। तीसरा खोलोगे पतित पावनी गंगा नहीं। चौथा खोलोगे वो 84 लाख यूनिया नहीं। सारे ऐसे टॉपिक्स होते थे कंप्लीट ज्ञान के। हम वो मैगजीन लेकर के बस में चढ़ जाते थे। हम पहले जाया करते थे अंबाला पिक्चर देखने, जब होता पहली पहली पिक्चर अंबाला है तो पटियाला से अंबाला जाएंगे पिक्चर देखने। हम उसी बस में चढ़ जाते जहां हमारे स्टूडेंट्स बैठे होते थे, सबको वो एक मैगिक मैगजीन बांट देते थे और कहते पढ़ो इसको। वो पढ़ते थे, जब वो उतरते थे हम आगे उतर जाते थे, सबसे वो वापस ले लेते थे। फिर पूछते वहीं खड़े खड़े क्या पढ़ा आपने, कहते ये कमाल की तुम्हारा ज्ञान है, सर्वव्यापी नहीं, ये दुनिया ने किसी ने कहा नहीं। अच्छा मैंने कहा मेरे से बात करो, इतना नशा था। हम कहते परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है, ये उसको मार रहा है, एक मारने वाला एक मार खाने वाला, दोनों परमात्मा है क्या। एक इसी प्रकार से बात करके वो बिल्कुल मान जाते थे। ऐसे हमारे स्टूडेंट बढ़ गए। वो हमारे हॉस्टल में क्लास शुरू होगी, जहां हम रहते थे कमरे ही में दरी बिछा के ग्रामोफोन लगा के, वो ग्रामोफोन था और होता था वो सुई वाला लगा के, थाली लगा के और गीत बजा दे, तू प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यासे हम। वहां ही लाल बल्ब, उस वक्त शिव बाबा नहीं था ऐसा, लाल बल्ब जलाते थे रोशनी करके योग लगाते थे। तो वो वार्डन ने कहा तुम लोग क्या करते हो 4 बजे उठ के, वो यहाँ छुट्टी करो यहां से। तो हमने तो छोड़ दिया फिर हॉस्टल। हमने बाबा ने कहा ज्ञान देना है, वहां मकान लिया, फिर वहां से दरी बिछाई, ये बिछाया, दादियों को बहनों को, वो तो दादी नहीं कहते थे बहने कहते थे, बहनों को निमंत्रण दिया, क्लास शुरू कर दी, सेवा केंद्र खुल गया। दादी जानकी जी पहले पहले आए, हमको देखा ये खाना बना रहे हैं बेचारे, हीटर पर खाना बनाते थे, वो जल रहा है कुछ हो रहा है, उन्होंने आते ही पहले ब्रह्मा भोजन कर दिया, क्या वो कड़ी सिंधी कड़ी और वो साबुदाने का हलवा बड़ा अच्छा खिलाया। मतलब कहने का बड़ा रिम झिम करते करते, योग करते, ज्ञान सुनते करते करते आगे बढ़ते चले गए बाबा। अच्छा वहां सेंटर खोल गया, और भी सेंटर खुले, नाभा खुला, चंडीगढ़ खुला, कई बाबा ने जो कहा था सेवा करो वो बाबा का ये बात थी वो पूरी की। फिर बाबा ने कहा था कि तुम अपने लौकिक घर वालों को भी ज्ञान दो। फिर हम गए अपने समर वेकेशन था, घर गए तो सबको ज्ञान दिया, माता जी को, पिताजी को, जो कि पिता माता सब, भाई बहनों को सब दिया, और साथ गांव वालों को भी दिया। सबको ज्ञान अच्छा लगा, लेकिन हमारे पिताजी ने शर्त रख दी, लौकिक पिताजी ने, कि अगर ज्ञान आपका अच्छा है, उनको लिख दिया मैं आत्मा हूं, कमेंट्री होती है मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये वो ज्ञान स्वरूप हूं, जो जो मैं आता था वो लिख दिया, वो चलते चलते उसको रिवाइज करते थे। खेती में जाएंगे, हमारी खेती थी 30-40 एकड़ जमीन थी, वो जाके चलते रहते थे, वो बोलते अंदर अंदर बोलते रहते थे, उसको भी अनुभूति होनी शुरू हुई। तो उसने कहा ज्ञान तो आपका ठीक है, परंतु मैं चाहता हूं कि मुझे आपका बाबा कुछ दिखा दे, तब मैं इस ज्ञान को सच्चा मानूंगा। मैंने कहा हमें तो कोई आज तक दिखा नहीं, मैं आप अभी बाबा मम्मा से मिले नहीं, ना किसी दादी से मिले, तुम्हें कैसे दिखाई देगा आपको। उसने कहा तब कैसे मानूं मैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति बड़ी की थी। वो क्या करते थे, सारा वो हकीम थे, वो डॉक्टर छोटे, वो यूनानी हकीम, वो रात्रि को भागवत पुराण लेकर के किसी न किसी गली में, किसी न किसी मोहल्ले में जाकर सुनाते थे, और मैं भी साथ चलता था। ये ध्रुव की, प्रहलाद की, गौकरण, ये वो सब जो किस्से कहानियां सब मैंने सुनी हुई थी, वो भी सुनाते रहते थे, सप्ताह सप्ताह कोर्स करते थे। बड़ी भक्ति थी कृष्ण की, बहुत भक्ति की थी। मैंने कहा अभी अब बैठेंगे भोग में, तो हमने गुरुवार को भोग लगाया सबने मिलकर के, जैसे लगाते हैं हलवा बनाया, ये बनाया बनाया, तो वो बीच में उठ के खड़े हो गए, कोई नहीं, ना उसने अभी बाबा को मिले, ना मम्मा को मिले, किसी में मिली, बीच में उठ के खड़े हो गए और वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कुछ न कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये, तो इधर जाए तो इधर जाए, ऐसे घूमते रहे, पकड़ने की कोशिश करें, वो उनके हाथ में कोई चीज ना आए, जिसको पकड़ना चाहते थे वो उसमें हाथ में ही ना आए। तो फिर वो तो उतरे गए नीचे, आंखें बंद हुए उतरे, कहते हैं जी मैं तो आज कहीं गया था पता नहीं, वहां पर बहुत सुंदर श्री कृष्ण बच्चा मुझे देखने में आया, मैं उसको पकड़ता हूं वो मेरे हाथ में नहीं आता, मैं यहां जाऊं तो वहां चला जाए, वहां जाऊं तो वहां जाऊं। फिर कहता फिर बाद में आपके बाबा जो है वो दिखाई दिए और उन्होंने कहा बच्चे जब तुम निश्चय बुद्धि बनोगे और धारणाओं पर चलोगे तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर तो कंडीशन बाबा की कंडीशन भी ठीक है, उन्हें जो कुछ था लसन प्यास जो कुछ था धारणा, वो तो थे बुजुर्ग थे, मीडियल वो थे, अपना शुरू कर दिया नहाना धोना जो होता है हमारे ज्ञान में शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ज्ञान में चल पड़े वो, हाँ फिर वो शुरू किया, तो फिर अगले सप्ताह फिर भोग लगाया, हम समर वेकेशन में थे, फिर वो ध्यान में चले गए, ध्यान में गए और श्री कृष्ण उनकी गोद में आया और इतना उनके आंसू भाया, इतना प्यार, इतना वो खुश हुए जिसकी बात मत पूछो, ये मैं स्वयं देख रहा हूं। कोई यहाँ पर दादी नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनको ऐसा जादू लगा, वो ध्यानी बन गए वो जब उनसे पूछो ध्यान में चले जाए, जब वो बैठे बाबा से पूछ के, वो बाबा से संदेश लाने लगे। हम लौकिक संदेश भी जो पूछते थे बाबा से पूछ के, और ये चीज करे क्या ना करे, ये जमीन बेचे क्या ना बेचे, वो बाबा से एक्यूरेट संदेश लाते थे। हमारे लौकिक संबंधी जो अज्ञानी थे कहता इनसे पूछवाओ, कोई काम होता था वो, तो वो पूछ के आते थे। मैं आश्चर्य को, ये इसको क्या हो गया है, रियल मैं देख रहा हूं। जब वो बाबा के पास मधुमन आया, बाबा ने बहुत प्यार किया उसको, क्योंकि वो भोले गांव के भोले भाले भगत उस टाइप के थे, ज्ञान तो पूरा आ गया उसको, एकदम फटाफट समझ आ गया। मम्मा उनको बहुत स्नेह देती थी, तो वो क्या किया, तो जब यहां सीजन नहीं होता था तो मम्मा कहती थी बैठो संदली पर, वो ही भोग लगाता था बाबा को, यहां ये है ना मरा हाल है, ये हिस्ट्री हाल, उसमें भी कई दफा उस सीजन के बगैर वो बैठ के भोग लगाता था। तो मैं आश्चर्य का हूं, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। तो एक एक हमारा लौकिक परिवार का ज्ञान इसमें, वो ध्यान में जाने से, उसका पाठ खोलने से, संदेशी बनने से, सारे लौकिक परिवार के हमारे भाई जो थे सारे ज्ञान में आ गए। तीन भाई आए, एक भाई नहीं आया, तीन भाई सिस्टर बहने दूसरे और जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सारे ज्ञान में चलने लगे। तो मैंने कहा बहुत, बाबा ने जो वरदान दिया कि अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो, वो भी वो शुरू हो गया, वो भी बात ठीक होगी। तो फिर तो हम जैसे बाबा ने कहा तुम पढ़ाई पूरी करो, तो पढ़ाई पूरी कर ली धीरे धीरे करते करते। हम बताएं, हमने बिल्कुल स्टडी की विद डिसइंटरेस्ट, कोई ध्यान नहीं दिया। अभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी भोग है, कभी प्रदर्शनी है, कभी कुछ है। हम तो क्लास में लेक्चर भी अटेंड नहीं करते थे, और इंजीनियरिंग में एक लेक्चर मिस करो दूसरा समझ नहीं आएगा। हमें कुछ समझ थी नहीं क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो आया लिख दिया बड़ी मुश्किल से। हम वो नहीं, हमारी हाजिरी लगा देते थे हमारे दोस्त, वो टोपो लगा देते थे जैसे कि हम इम्तिहान में बैठे पास तो हो गए। बट आई टेल यू विद डिसइंटरेस्ट, क्योंकि बाबा ने कहा काम नहीं आएगा तो क्या पढ़ना है, पढ़े ही नहीं हम, लेकिन पता नहीं कैसे पास कर दिया। आई डोंट नो, डिग्री हम लेने नहीं गए, मैं क्या करना डिग्री लेके, पढ़ना है नहीं तो डिग्री क्या। अगर डिग्री हाथ में होगी तो फिर कभी क्या, हम तो बाबा की सेवा करनी है, डिग्री होगी तो फिर वो कभी दिल कभी आ जाए, कभी परीक्षा है अपने इसकी तो फिर दिल ना कर जाए। डिग्री लेने भी नहीं गए हम बिल्कुल, और इस तरह से करते करते फिर बीच में बाबा मम्मा से मिलने के लिए मधु बनाते थे। एक मैं और बात सुनाता हूँ इंसिडेंट बाबा का। हम फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम बाबा के पास मिलने आए, उस वक्त बाबा की एज 80 साल की थी, और यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर स्वयं बीच का एक मकान था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, ऑफिस केवल बीच वाला टीन का जो है छप्पर, उसमें बाबा का कमरा था, मम्मा कमरा था, प्रेस करने का था, किचन था छोटा मोटा ये था। तो और ये जो शांति स्तंभ अभी है वो तो टेरिस कोर्ट था, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी। उस वक्त हम जब आए तो बाबा उस वक्त क्या करे, एट द एज ऑफ 80 बाबा क्रिकेट खिला रहे थे बच्चों के साथ। होते ना आजकल बच्चे खेलते हैं गलियों में, वो दादा विश्वतन बाल फेंकते थे और बाबा उसको लगाते थे, बच्चे पकड़ते थे, बड़े खुश हंसते थे करते थे। तो उसमें भागवत में श्री कृष्ण बाल फेंकता था और वो जमुना में चली गई, वो इस प्रकार का सीन था। तो मैंने, मेरे पास कैमरा था, मैं फोटो लेने लगा। बाबा ने खेल बंद किया, बाबा ने कहा बच्चे फोटो मत लो। मैंने क्यों बाबा, बाबा के मावा के बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं, ये कौन बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा का भी नहीं आएगा आत्मा का, तो मेरा फोटो तो आएगा नहीं, और ये शरीर तो किसी काम का नहीं। तो बाबा कभी भी शरीर को देखो इन चीजों में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। हमेशा कहते थे बी सोल कॉन्शियस एंड बी गॉड कॉन्शियस, शिव बाबा को याद करो या अपनी आत्मा को याद, दोनों को याद करो। ये उन्होंने सबक दिया कि बच्चे इन चीजों में क्या रखा है। हमने उसके बाद कभी फोटो खींचा नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे का दिल खींच ही लो, खींच भी लिया वो। तो कहने का मतलब ये बाबा शिक्षा देते थे कि हमेशा हमेशा सब कुछ करते हुए भी आत्मस्वरूप में टिको और बाबा की याद में रहो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे करते रहे, चलते रहे, देखते थे हम बार बार, हर साल में एक ही दफा आते थे, दो दफा आते होंगे, ज्यादा नहीं है। तो कभी कोई कविता पढ़ता था तो बाबा कहते थे अगर ब्रह्मा बाबा की महिमा करेगा बाबा बंद करा देंगे। इस प्रकार से बाबा अपनी इस ब्रह्मा की तो कोई वो चीज सुनना नहीं चाहते थे। इस प्रकार चार साल पूरे हुए हमारे, इंजीनियरिंग पास कर ली, तो बाबा मामा के पास हमें लोकित फादर और मदर को लेके आए, क्योंकि आप सब ज्ञान में आ चुके थे। तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया बच्चे मैंने तो कहा था कि ये तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो हमें उस वक्त फिर वो उन्होंने जगदीश भाई जी के पास दिल्ली भेज दिया, तब 1961 की बात है। और लेकिन हमारे लोकित फादर चाहते थे कि ये जॉब करे अच्छा है, तो उन्होंने मम्मा से कहा मम्मा अगर ये जॉब करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, यज्ञ मिलेगा। तब पाठ भी बेगरी पाठ था, अभी कोई इतना समृद्ध हमारा यज्ञ नहीं हुआ था। तो बाबा मम्मा ने कहा नहीं, बाबा जानता है कि किसकी जन्मपत्री क्या है, किसको क्या काम देना है, तो बाबा जो जैसे कहता है वैसे ही करो। तो तभी से हम फिर अपना जो लौकिक परिवार को छोड़ करके हम कमलानगर पहले गए, जो है ना कमलानगर सेंटर, देखा आपने पुराना सेंटर, आपने देखा किसी ने, एक कुछ नहीं देखा होगा। तो उस सेंटर पर हम गए जहां जगदीश भाई जी रहते थे, बहुत उनसे उनका संग मिला, दो तीन साल रहने का मौका मिला। तो वो भी कहते थे बाबा ने इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को भेजा है, इसके पीछे कुछ तो राज होगा, समथिंग भगवान जो प्लानिंग करता है उनकी प्लानिंग तो दूर की होती है। वैसे देखो आप देखो, कई कहते हैं ना वो हमारी दादियां कब आई, किसी की 8 साल, किसी की 10 साल, किसी की 11 साल, किसी की 6 साल, 5 साल, इतनी उम्र थी। आप बताओ ज्ञान किसके लिए होता है? ज्ञान तो बुजुर्गों के लिए होता है ना, तो इतनी छोटी उम्र में क्यों आई? मैंने ये प्रश्न पूछा दादी गुलदार जी से, दादी आप 8 साल के थे, आपको क्या पड़ी थी ये इस ज्ञान ध्यान को सुनने की? हमारी कमलमणि दादी 6 साल की थी, मैं आपको क्या पड़ी थी इस ज्ञान में आने की और इतनी तकलीफें सहने की? दादी का जवाब पता क्या था? दादी ने कहा कि हमें और कुछ नहीं, ज्ञान तो था ही नहीं तब। बाबा की पालना, बाबा का प्यार इतना था जो हमको खींच के ला रहा था, ये बताया था। अब देखो आप एक चित्र यहां देखेंगे लगा हुआ, वो सारे खड़े हैं भाई बंद, कोई छाता लेके खड़ा हुआ है, कोई वो लाठी लेके खड़ा हुआ है, कोई टोपी पहने हुए है, कोई ऐनक लगाए हुए है, सारी पिकटिंग कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी बहनें अंदर जाना चाहती है, वो उनको रोकना चाहती है इतनी धूप में। अब बताओ कौन खींच रहा था उनको? केवल बाबा का प्यार था, बाबा की पालना थी, ज्ञान तो बाद में आया, तो ऐसी बाबा की पालना थी। तो हम भी इस प्रकार से बता के ये जो बाप का कार्य सब बच्चों का कार्य, ये हमारा लक्ष्य है, भगवान आया हुआ है। तो वहां जगदीश जी के पास गए, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया, उन्होंने हमें शिक्षा दी, उन्होंने हमें सिखा, उनकी लाइफ देख करके त्यागमय लाइफ। देखो दो, पहले हमें दादी जानकी जी मिले, बिल्कुल त्याग तपस्या की वो थी, मस्त फकीर थे। दूसरे फिर मिले हमें भ्राता जगदीश जी, जो कि त्याग तपस्या वाले थे, ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, त्यागी भी थे, तपस्वी भी थे, कर्मठ थे, हम बताएं आपको, यानी और हर प्रकार से टॉप पर थे हम बताएं। तो वो हमें ले आते थे, सिखाते थे, इतनी हेल्थ अच्छी थी उनकी तब, और वो हमें हर प्रेसों में ले जाते थे, कहीं 12 टूटी सदर बाजार, कहीं वो क्या नाम, कई भिन्न भिन्न प्रकार की जगह पर, कहीं चावड़ी बाजार, कहीं कहीं सब जगह दिखाते थे। वो इतनी हेल्दी थे, वो चलते थे तो हम भागते थे, उनकी इतनी लंबी टांगे थी कि वो चलते थे हम भाग भाग के चलते थे, इतना था। सारा सुबह निकलना और खाना पीना भी कुछ नहीं, या मूंगफली खा लेंगे या कुछ और खा लेंगे, केले खा लेंगे, खाना भी नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से बताइए, हम उनके साथ रहने का मौका, सब कुछ सिखाया, और खुद भी कार्य करते थे हम, बच्चों उठते थे 2 बजे, लिखते थे, फिर छपवाते थे, सब ट्रेनिंग हमको उन्होंने दी। तो इस प्रकार से चलते हुए फिर तो हमें क्या हुआ, कुछ समय बाद हमारा वहां से रजौरी गार्डन, फिर कृष्ण नगर में वो क्या हुआ, एग्जीबिशन की वो निकली थी इन्वेंशन बॉम्बे में। तो हमने क्या किया कि हम चाहते थे उस कुछ चित्र लेकर के एक सेट हमने बनवाया और बाबा के पास लेके आए। तो शॉर्ट में सुनाता हूँ, 20 चित्रों का सेट आर्टिस्ट ने बनवा करके बाबा के पास लेके आए और ये यहाँ रखा, यानी हिस्ट्री हॉल बन चुका था वहां रखा। तो बाबा और दीदी आए, शायद मम्मा चली गई होंगी शायद, ऐसा तब देखा। फिर बाबा ने अपने कमरे में बुलाया, देखो दूसरा वरदान क्या दिया, पहले तो कहा ये तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी, दूसरा बताया कि फोटो खींचने की क्या तरीका है, तो किसी को वो नहीं है, तीसरा जब हम वो चित्र सब देख के चले गए और बाबा अपने कमरे में गए, फिर हमको बुलाया, हम नीचे बैठने लगे, बाबा ने कहा नहीं साथ बैठो मेरे, गद्दी पर बैठो, अभी है ना गद्दी पड़ी हुई जो तकिया और गद्दी, वहां यहां बैठो। मैं तो छोटा बच्चा, मैं तो हिचकिचा रहा था कि मैं कैसे बैठूं, इतना बड़ा बाबा, हम तो बड़े संकोच कर रहे थे। बाबा ने बिठाया, फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, बड़ा वरदान दिया जबरदस्त, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, सुना, यहां भी और वहां भी, वहां कहां, कहां बोलो, गोल्डन एज में, कमाल है। छोटा सा काम किया हमने, एक चित्र बनवा के लिया, आजकल तो बाबा टच करे तो क्या से क्या हो जाए, लेकिन छोटा सा काम करके आए थे, बाबा को अच्छा लगा और बाबा ने ऐसा वरदान दिया, बड़ी हमें भी बहुत खुशी हुई, खुश तो होना पड़ता है क्योंकि वरदान दिया है। इतनी सेवा इससे हुई, शायद आप दिल्ली वाले जानते होंगे, हजारों प्रदर्शनियां बनी, सैकड़ों म्यूजियम बने, कितने मेले बने, हमने पांच छह आर्टिस्ट, चार पांच आर्टिस्टों को एम्प्लॉय किया। बाबा लिखते थे ये बनाओ सीढ़ी बनाओ, इसमें ये चेंज करो, देखो है ना सीढ़ी देख रहे हैं आप कितना चेंज है। बाबा कह रहे इसमें रखो गुलजारीलाल नंदा को लिटा दो कांटो की स्टेज पर है, नीचे देखो ये यहाँ है, लिटा दो इसको, ये हमारा ही वहां का बना हुआ है, और पीछे उसका फाइबर प्लान तकिया रख दो और हाथ में प्याला दे दो, देखो अब वो भीख मांग रहा है। कितना अथॉरिटी से बाबा बोलते थे, कोई कह सकता है इंसान ऐसे? कहते नहीं बच्चे बनाओ, डरते क्यों हो, बनाओ ऐसा और उन लोगों को दो। अब बताओ हम एक दफा चंडीगढ़ सेंटर खुला, वहां का एक वो गवर्नर था गैडगिल, पता नहीं क्या नाम था, वो याद नहीं आ रहा, हम उसको चित्र थीरी का बना के देने सौगात देने के लिए गए, तो वो पहले तो वो बड़ा खुश हुआ कि चित्र इतना फ्रेम बना दिया, जब देखा कि तो ब्रह्मा कुमारी था, वो कहता मैं नहीं नहीं इसको ले जाओ मुझे जादू लग जाएगा, वो जो उसको जादू याद आ गया पुराना, जादू की बात तो थी, ये इतना ज्ञान ऊंचा है, ये जादू से कम थोड़ा कोई। आप देखो मुझे एक दिन में ज्ञान मिल गया, लोग कहें इसको जादू लग गया या इसका दिमाग ठीक नहीं है, आप बताओ सारा कुछ छूट जाए विद इन वन डे, न खाना पीना बदल जाए, दोस्त बदल जाए, सब बदल जाए, इसको जादू नहीं कहे तो क्या कहे? तो हम सभी को जादू तो लगा हुआ है, आप दुनिया क्या कहती है हम क्या कहते हैं। तो उसको मतलब जब चित्र बना के हमने वो किया, एक सीढ़ी का चित्र पहले बनाया था, तो बाबा के पास आया, बाबा को बड़ा पसंद आया था, फिर रोज बाबा लेटर लिखे बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, ये बनाओ, ये बनाओ, तो ये हम चेंज करते रहते थे, मुरलियों में कहता पाता है चित्रों को चेंज तो करना है, आगे बढ़ाना है, सब बातें पत्र हमको लिखते थे बाबा। और फिर हमने कितने मेले प्रदर्शनियां, देखो एक बाबा कहते कोट ऑफ आर्म्स बनाओ, चित्र एक बना था कोट ऑफ आर्म्स, यहाँ शायद नहीं है वो, उसमें वो तीनों आर्मीज हैव रीअपीयर्ड, यादव कौरव पांडव, यादव कौन है यूरोपियन पीपल, उसमें पांच जो न्यूक्लियर पावर थी उनके कोट ऑफ आर्म्स लेकर सब एम्बेसी से लगा दिए, अपने जो कौरव गवर्नमेंट का भी लगा दिया आप जानते क्या है वो, और पांडव गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति लिख दिया, निश्चय जो जिनकी प्रीत बुद्धि है यादव कौरव पांडव की विपरीत बुद्धि विनश्यन थी, और पांडव गवर्नमेंट की प्रीत बुद्धि विजयन थी, ऐसे ऐसे चित्र बाप बनवा के प्रदर्शनी में लगवाते थे, कितनी अथॉरिटी थी, अथॉरिटी से बात करते थे कि राइट इट इज रियल, ये बात तो राइट है, गलत थोड़ी है। तो इस प्रकार से चलते चलते काम होते होते हम इस कार्य में इतने बिजी हो गए, कभी जगह जगह बाबा भेजे, वहां जाओ म्यूजियम बन रहा है, वहां जाओ म्यूजियम बनाओ, बाबा कहते प्रदर्शनी लगाओ दिल्ली में कम्युनिटी हॉल में प्रदर्शनी लगी, बाबा खुद देखने के लिए आएगा, उद्घाटन खुद करेगा, बाबा ऐसे कहते थे अता देते थे। म्यूजियम बनाओ, वो पहले म्यूजियम बना था वो साउथ एक्सटेंशन का, वो बनाया बाबा खुद उद्घाटन करेगा, लेकिन कभी आया नहीं, लेकिन हमेशा कहते हैं वैसे। तो इस प्रकार से बाबा ने खूब मौज में लगा करके बच्चों से सेवा लेते हुए कैसे यहां तक पहुंचे हैं, कोई एक दिन में नहीं पहुंचे, कितने मेले लगाया, कितनी प्रदर्शन लगाई, कितने कुछ किया, अब भी प्रदर्शनी की बड़ी वैल्यू, अब भी बहुत प्रदर्शन लगती है। ये कार्य जो था बाबा ने हम लोगों से निमित्त बना के कराया, फिर प्रदर्शनी सेट छपा वो बाबा के बाद शिवाकाशी के, वहां से छपा के लाए, इस प्रकार से सेवा में लगे रहे। 1984 में जो थे हमारे भ्राता जगदीश जी ज्यादा बिजी हो गए फॉरेन सर्विस में, आना जाना बहुत था, तो उनको है फिर मुझे कहा गया कि आप उनको मदद करो, तो फिर हमें वो ज्ञान अमृत वार्निवल का भी वो संभालने के लिए कहा गया, वो हम करते रहे, फिर जाते थे जगदीश जी के पास, जो डायरेक्शन होता था करके वो छपवाते थे, फिर भी भ्राता जी के साथ बहुत हमारा कनेक्शन रहा। ही वांटेड परफेक्शन, उनकी एक खूबी थी कि हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, उनके तीन शब्द होते थे परफेक्ट यानी बेस्ट हो, चीपेस्ट हो और अर्लीस्ट हो, तीन शब्द कहते थे, जो चीज कराओ पहले तो फ्री होनी चाहिए, लोगों को सेवा करके फ्री करे, हम कोशिश करते थे भाई कम से कम दाम ले, फिर हो भी अच्छी, ऐसे नहीं कि खराब चीज छपवा दो, फिर वो हो तीसरा, फिर वो जल्दी भी छपे, क्योंकि बाबा कहते हैं फटाफट भेजो, हर रोज वहां से पत्र आता था बाबा के पास, वो हमें पत्र लिख के देते थे, रात के 10 बजे एक ट्रेन चलती थी वो अहमदाबाद मेल, उसके डब्बे में डालने आते थे, वो सुबह पहुंचा था बाबा के पास, फिर उसी दिन बाबा का पत्र आता था। बड़ा एक वो कम्युनिकेशन था बाबा जी, बाबा का और जगदीश भाई का, हम बीच में आते आते थे। इस प्रकार से चलते रहे भाई, में उस सेवा में ही बाबा ने लगा दिया, प्रिंटिंग की सेवा में लगा दिया। फिर हम कृष्ण नगर में थे, वहां हमने एक मशीन ली, दादी ने कहा मशीन ले लो। धीरे धीरे करते 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 फिर उसके बाद ये 1992 में, वहां से फिर हम जब देखा बहुत विस्तार हो गया, हम पहले नोएडा में मकान जगह लेने वाले थे, बहुत प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, तो फिर हमें यहाँ शांतिवन में जगह मिली हुई थी, वहां पर आया, वहां प्रेस बना, जगदीश भाई जी है उन्हें बहुत बड़ा प्रेस बनवाया, बना करके फिर ये यहाँ पर चालू हुआ। कितने 92 से लेकर के अभी 23 साल से यहाँ पर ये दिन रात कार्य हो रहा है। हम जब आए थे तो लोग हमारे प्रेस वो कागज वाले स्याही वाले कहते थे ये मशीनें आप वहां पर नहीं चला सकेंगे, प्रिंटिंग प्रेस इस गांव में चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ना बेरिंग मिलता है, ना बुश मिलता है, ना कुछ मिलता है, कोई चीज मिलती नहीं थी। लेकिन अब वो देखते हैं इतनी बढ़िया मशीनें प्रेस प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, वो कहते हैं आप नहीं चला रहे, ये आपका बाबा ही चला रहा है। हम बताए उनके मुख से निकलता है और रियल बात है ये, वो खुद कहते हैं, उनको भले निश्चय हो ना हो, ये कहते हैं ये आपका काम नहीं है, ये कोई ऊपर वाले का काम, और रियलिटी में ऊपर वाले का काम ये। और हमारे बुजुर्गों का, हमारे जगदीश भाई जी, हम तो अभी ऐसा फील करते हैं कि अभी भी उनका हमारा साकाश काम कर रहा है। हमारी दादी, हमारे जगदीश भाई, हमारे बाबा मामा तो है ही, उनके ही साकाश से सारा ये काम चल रहा है। मुझे फीलिंग आती है कि जगदीश भाई हमारे साथ है, वो ये सारा कार्य अभी भी चला, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है। क्योंकि लास्ट में हम बताएं, उनकी इतनी महीन बुद्धि थी, जो वो कहते थे मैं जल्दी जल्दी काम करता था, मुझे पता था वो कहते मैं तो 75 ईयर्स के बाद चला जाऊंगा, आई डोंट वांट दिस थिंग। तो और उनको खुश करना बड़ा मुश्किल था, ये सुन लो आप, जगदीश जी को सदा राजी कर देना एक छोटी मोटी बात नहीं थी। हमें बड़ी दीदी कहती थी अगर आप जगदीश जी को खुश कर दोगे तो आपको मैं नंबर फुल मार्क्स दे दूंगी। ये दीदी है ना, बड़ी दीदी थी, कभी देखा आपने, वो कहा करती थी। तो मैंने कहा अच्छा, हम जो कुछ भी लाते थे छपा के ना, उनकी नजर वहां पड़ती थी जहां कोई कमी होगी, इतनी तेज नजर थी, वहां पड़ेगी जहां कोई ना कोई बात होगी जरूर। तो उन दिनों में तरीका ही बड़ा मुश्किल होता था प्रिंटिंग का, हाथ से करो, ये करो, वो करो, कंप्यूटर थे नहीं, कुछ था नहीं, बाइंडिंग भी बहुत मुश्किल होती, सब होता था। तो वो उनकी वही नजर जाएगी, कुछ कमी होगी। अब देखो एक मैं बताऊं आपको, एक वो पीछे स्लोगन होता है ना, सत्यु की दैवी स्वराज आपका जन्म सद अधिकार है, अब नहीं तो कभी नहीं, ये ठीक स्लोगन है ना, ये गलत है, मैं फिर पढ़ता हूं, सत्यु की दैवी स्वराज आपका जन्म सद अधिकार है, अब नहीं तो कब नहीं, ये ठीक है या गलत है? ठीक है ना, गलती क्या इसमें है? बता बस, एक आदमी बोले, देखो मैं ये बोल रहा हूं, मैंने लिखा ये, सत्यु की दैवी स्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, अब नहीं तो कभी नहीं, क्या गलत है? आप किसी ने नहीं बताया, इसमें ईश्वरीय शब्द नहीं है, आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा ने ये गलती निकाली थी, हमने छपा के भेजा, हमें तो याद रहा नहीं, हमने कहा ठीक है, बाबा ने कहा ईश्वरीय क्यों मिस किया, जब तक ईश्वर के घर जन्म नहीं लेंगे तब तक अधिकार मिल ही नहीं सकता है। देखो कितनी बड़ी बात थी। तो बाबा और हमारे जगदीश भाई बड़े एक्यूरेसी चाहते थे, एक एक शब्द देखते थे क्या गलती है क्या है। इस प्रकार से चलते रहे और यहां आ गए, प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, बहुत समय बीत गया है, जमुना में बहुत पानी बह गया है, अब तो काफी नजदीक आ गया है, अब तो विनाश कहां है, सामने है कि सिर पे है? सिर पे आया, देखो बिल्कुल, हम तो अब तैयारी, बाबा कहते हैं सडपंद, हमारी मुल्तानी भाषा में सडपंद कहते हैं, सडपंद माने बिल्कुल आवाज, दो तो आवाज उसकी आती है, गांव के पास पहुंच रहे हैं, तो ऐसे नजदीक है, अब तो क्या करना है, बाप समान बनना है ना हम सभी को, बाबा मम्मा समान बनना है। कैसे बनेंगे बाबा मम्मा समान, बन गए या बनना है बोलो, बन गए है? कितना फासला अभी, कितना फिर भी कितना फासला है, अभी भी फासला काफी है। कहां बाबा कहां हम, फिर भी फासला भी है। हाँ बाबा जैसे बन रहे हैं लेकिन भी फासला तो है, तो वो दृढ़ संकल्प से हम पार कर सकते हैं। मैं तो बताऊं, बाबा रोज कहते हैं याद करो याद करो याद करो। आज भी मुरली में कितनी दफा याद कर याद कर, बाबा कहता है भाषण करना आसान है, ये करना आसान है। बहुत वो बाबा तो उसको लबार मारना भी एक दफा कह दिया बाबा ने कि बच्चे वो बहुत मारते याद में रहते नहीं है, कितना बाबा कहते हैं। ऐसे भी कह दिया, देखो बाबा कह सकता है थी, हम नहीं कह सकते। बाबा तो इतना था बच्चों को कुछ भी कहे, हम तो बाबा हमको लिखते थे बेबी बुद्धि, आज बेबी आए ना तो मैं बड़ा याद आया। कोई हम काम करेंगे कुछ बात गलती होगी या कोई बाबा के अनुसार नहीं होगा तो बाबा कहता बच्चे मेरे बेबी है, तो हम बड़े खुश होते थे बाबा हमको बेबी कह रहे हैं और क्या चाहिए। बेबी है बाबा के और आए बेबी, तो मतलब हम तो उससे बड़े खुश होते बाबा ने बेबी कहा, मुरली में कह देगा बाबा बेबी तो हम समझ जाएंगे मेरे लिए कह रहे हैं। तो उसमें वो क्या था, अब बाप समान कैसे बनना, थोड़ा थोड़ी 5-7 मिनट में बताता हूं कि क्या पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। देखो बाबा याद का बात कहते हैं, हम याद को मुश्किल ना बनाए। क्या हुआ है, अब हम याद को बिंदु बन बिंदु को याद करो, बैठे रहो वो करो। बाबा ने कहा क्या बैठे बैठे करना है, आज बाबा तो कहते हैं इसको योग भी मत कहो, क्या कहते हैं बाबा, याद कहो, याद की यात्रा कहो, कितना सिंपल कहते हैं। और हट कर के बैठने की दरकार भी नहीं है, चलते फिरते भी याद करो ये करो, कितना आसान है। तो देखो बात क्या है, अगर हम संपूर्ण बनना चाहते हैं, कर्म बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना चाहते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप कौन सा है बोलो, श्रीमद्भुत चल रहे हैं आप है? क्या बाबा, देखो सबसे पहला, अभी मैं कहां तक पहुंचे आप देखना, पहला हमारा जो स्टेप है, जो हमारी अवस्था चाहिए, विकर्माजीत, फर्स्ट कर्मातीत बनने के लिए पहली स्टेज है विकर्माजीत। अब हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो आप इसमें पास हैं सभी के, नहीं पास ही होंगे मैं समझता हूं। बाबा को फेथ है मेरे ब्राह्मण बच्चों जो भट्टी करने के लिए हैं, वो अब कोई विकर्म नहीं करते होंगे, नो विकर्म, ठीक है, ये तो आप पास है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट इसका स्टेज बोलो, दूसरा स्टेज है विकल्पाजीत, नो विकल्प। ये भी मैं समझता हूं हम ब्राह्मण बच्चों में विकल्प नहीं होगा, विकल्प यानी कोई बुरा संकल्प, बॉडी कॉन्शियसनेस का संकल्प, दृष्टि वृत्ति का संकल्प, नो विकल्प। अगर विकल्प आया सुन लो तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जो आपने बैटरी चार्ज की है रोज करते हैं सुबह अमृत वेले करते हैं वो करते हैं, अगर विकल्प आया तो मानो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डरना चाहिए, ओहो मेरे मन में बुद्धि में कोई विकल्प आए नहीं, आए तो फौरन भगाना चाहिए, एक सेकंड भी क्या, एक मोमेंट भी नहीं लगना। दूसरा क्या हुआ, विकल्प जीत। अब तीसरा कौन सा स्टेप है, हाँ बिल्कुल, व्यर्थ अतीत, नो व्यर्थ। अब हम व्यर्थ क्या है वो भी, उसकी भी परिभाषा है, हम समझते थे पहले ये क्यों ये क्या ये कब ये कौन ये कैसे ये हाउ ये सब ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ तो है ही, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन दादी गुलजार जी ने अभी क्लास कराई, ये कहा कि अभी आप यहां बैठे हैं आपको डिस्पेंसरी याद आ गई अपने कमला नगर की, व्यर्थ। आप शक्ति नगर पहुंच गए, ये व्यर्थ। परम धाम तो पहुंचो ठीक है, परंतु बुद्धि कहीं और जगह पहुंच जाए, काम बैठे यह पहुंच जाए बाहर, उसे कहते हैं व्यर्थ। वो भी व्यर्थ है क्यों क्या कब कैसे, लेकिन यह भी व्यर्थ है कि हमारी जिस समय जो संकल्प चाहिए वो संकल्प आना बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, वो है वास्तव में ठीक। तो तीसरा क्या है, व्यर्थ आतीत, बाबा को फेथ है मेरे बच्चों में विकल्प नहीं है, बस किधर अभी व्यर्थ भी कम होगा लेकिन अब व्यर्थ आतीत बनना है। और व्यर्थ के बाद और चौथी स्टेज कौन सी है, हैं? साधारण आतीत, नो साधारण, हमारे साधारण संकल्प बहुत होते हैं, कुछ तो खाने पीने की, ये तो बात ठीक है लेकिन साधारण बहुत। अभी देखो आप यहां से उठेंगे वहां तक जाएंगे क्या सोच रहे थे, पूछूं मैं आपसे क्या सोच रहे थे, आप कहेंगे नथिंग, हम तो कुछ नहीं सोच रहे। खाना खा रहे हैं क्या सोच रहे हैं, अपने आप खाना है मुख में आ रहा है, कहीं यहां तो जाता नहीं, यही जाता है अपने आप, उसके लिए पुरुषार्थ थोड़ा करना पड़ता है। यानी बहुत सारे कार्य जो है हमारे विदाउट एनी थिंकिंग होती है, तो उस समय हमारे संकल्प कुछ नहीं है। अब ट्रेन में बैठेंगे कुछ नहीं सोच रहे, बस में बैठे कुछ नहीं सोच रहे। बाबा कहते हैं हमारा टाइम नथिंग में बहुत जाता है, जैसे मैं बताता हूं स्कूटर ऑन कर दो और न्यूट्रल पर गियर पर रख दो, न आगे जाएगा न पीछे जाएगा, पेट्रोल जाया जा रहा है। तो यही स्टेज हम ब्राह्मणों के अभी तक है, पता नहीं आपकी तो अच्छी होगी, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि ये हमारा भी टाइम बहुत ऐसे चला जाता है, यानी कभी योग होता है कभी भूल जाते हैं। ये भूल जाना दैट इज अवर टाइम इज बीइंग वेस्टिंग इज नथिंगनेस, ये टाइम नथिंग में जा रहा है, वी आर डूइंग नथिंग। तो इसलिए बाबा कहते चलते फिरते खाते पीते उठते बीते याद करो याद करो याद करो, इसलिए बाबा कहते हैं जो न्यूट्रल टाइम जा रहा है नथिंगनेस में जा रहा है उसको चेंज टू पॉजिटिव, पॉजिटिव में करो, पॉजिटिव शुद्ध संकल्प लाओ। अगेन एंड अगेन देखिए शुद्ध संकल्प जो बाबा ने गोल्डन संकल्प दिए, और ज्यादा सोचने की दरकार नहीं भाई, टू मच मत सोचो, बहुत सिंपल गोल्डन संकल्प बाबा ने दिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, अनंत स्वरूप आत्मा हूं। ये सात गुण इतने अच्छे से जो हमारे स्वमान के गुण है, ये इनको रिवाइज करो, इनको याद करो बार बार, और संकल्प की बजाय ये संकल्प लाओ। देखो इंसान के मन में एक समय पर एक ही संकल्प होता है, दो इकट्ठे कभी नहीं आते, चाहे दो संकल्पों में 100 सेकंड का अंतर होगा, तो ये संकल्प लाओगे तो और संकल्प कोई आएगा नहीं व्यर्थ। ये बार बार लाओ बार बार लाओ, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। हम बता दें सिंपल, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। और आगे स्टेजेस बहुत है, पहले ये स्टेज हम देखें कि हमारा व्यर्थ तो समाप्त हो, व्यर्थ की जगह पॉजिटिव संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प ये शुद्ध संकल्प, उससे क्या मिलता है, दो चीजें आती है, पावर एंड प्योरिटी, इन शुद्ध संकल्पों से। और सत्युग में क्या चाहिए, ये दो चीज चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट, वो आती है पॉजिटिव संकल्पों से। गो ऑन थिंकिंग, गो ऑन रिपीटिंग, गो ऑन अंदर रिवाइज करते रहो, और अनुभूति होगी आपको, ये नहीं क्योंकि आत्मा का अनुभूति, अब मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, एक हाथ ऐसा लगता है ये मेरा हाथ नहीं है, आई एम फीलिंग डिटैच्ड। एक दफा कहा आपने अंदर संकल्प किया मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा लगेगा कि ये मैं हाथ से परे हूं, फीलिंग आती है ऐसी। बाबा कहा आंखें नम हो जाती है, क्यों होती है नम, प्यार है बाबा से, देखो आंखों में नमी आ गई, आना चाहिए अनुभूति होनी चाहिए, मेरा बाबा कहा आंखों में नमी है, खुशी के खुशी हो जाए वो। तो अगर हम बार 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 रिवाइज करेंगे तो रियलाइज जरूर होगा। गो ऑन, और संकल्प मत आने दो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठे ये शुद्ध संकल्पों की धारा बहाओ, नो इंटरप्शन इन बिटवीन। जगदीश भाई जी कहते थे, मैंने उनके लेक्चर सुने हैं कि व्हाट इज योगा, योगा मीन शुद्ध संकल्पों की धारा, और कोई संकल्प ना है, इंटरप्शन ना हो। तो ये शुद्ध संकल्पों का जो खजाना हम जमा करेंगे उससे प्योरिटी भी आएगी और पावर भी आएगी, और आपका हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा फरिश्ते समान बन जाएगा। आप किससे बोलेंगे उस पर असर पड़ेगा। आप कहां से पार जा रहे हैं तो कहेगा ये फरिश्ता जा रहा है, ऐसी फीलिंग आ सकती है अगर हम इसका बार 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 अभ्यास करते हैं। तो ये करना चाहिए, इसे मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल है ये। अब कोई कहता है बिंदु बन बिंदु को याद करना मुश्किल लगता है, वो भी करना चाहिए। एक दफा दादी को, दादी गुलदार जी से मैंने बात की, स्पेशल बैठा था मैंने योग पर ही, मैंने दादी जी आप बाबा कहता है बिंदु बन बिंदु को याद करो, उसमें तो थोड़ा समय होता है, टाइम भी वो लेकिन अगर हम इसमें ये करते हैं जैसे बाबा ने आप बताया हुआ है कि पांच स्वरूपों को याद करो, वंडरफुल है ये चीज, पांच स्वरूप ये तो इतना अच्छा है कि आप कभी फ्री रह ही नहीं सकते। गो ऑन, बाबा कहता है दिन में 8 बार, अब 80 बार करो। क्या मैं निराकार आत्मा हूं, है निराकारी और आकारी, निर्विकारी, अलंकारी और निरहंकारी, ये पांच शब्द है, पांच स्वरूप है। इसको इसको इसकी डिटेल में जाओ, हम तो जब डिटेल में जाते हैं तो पूरा चक्कर शांति वन का लग जाता है, इसी पांच स्वरूपों को याद करते करते। और क्या चाहिए, यानी हम इसको शुद्ध संकल्पों को इकट्ठा कर सकते हैं तो व्यर्थ आएगा नहीं, व्यर्थ अतीत बन गए तो फरिश्ता बनेंगे आप। और क्या चाहिए, यही सिंपल सा पुरुषार्थ है। ये जो थिंकिंग है, पहले कहते थे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट, नाउ बाबा सेज थिंक बिफोर यू थिंक, व्हाट यू आर थिंकिंग। अभी आ रहे तो आप क्या सोच रहे थे, अगेन एंड अगेन ये सोचना चाहिए मैं क्या सोच रहा हूं। शुद्ध संकल्पों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, ये बहुत पुरुषार्थ है, आप अपने अंदर का पुरुषार्थ है। इसको आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। बाप समान बाबा क्या थे, उनका हर संकल्प सुनते जाइए ना, पहले हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेषता विशेषता विशेष, कोई साधारण संकल्प नहीं था। किसी को ऐसे देख लेंगे ना उड़ जाता था, हाथ लगाएंगे वो खुशी नहीं फूला नहीं समाता था। तो ऐसे बाबा के कदम कर्म और सब चीज ऐसे थी। तो हमने बाप समान बनना है तो हमारा पहले हर संकल्प विशेष होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, थिंकिंग हमारी बदलनी चाहिए। यही पुरुषार्थ है और बहुत सिंपल है, और हर एक का इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। आप करो, आप कोई कोई कहे मैं तो गरीब हूं जी, इसमें कोई गरीबी की बात नहीं, हम तो मधोगरी ज्यादा नहीं दे सकते, हम तो कोई बात नहीं, कुछ भी मत करो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा हर संकल्प विशेष हो, हर संकल्प पॉजिटिव हो, खुशी क्रिएट करे, वो है। तो हम तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चलते फिरते खाते पीते भी याद करें और वो पुरुषार्थ में लगे रहें, लेकिन फिर भी बाबा जैसे कहते हैं भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, लेकिन हम भी ये इसकी खजाना जमा करते रहे शुद्ध संकल्पों का, और बहुत अच्छा है। और इसमें और किसी के अवगुण देखने की तो बात ही नहीं है। दादी एक बात करती है, दादी जान की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहती हैं कि अपनी दूसरे की चीज को चुरा के अपने कबाट में रखना, उसे क्या कहेंगे, वो क्या होगा, आप खुद ही बताओ। तो वो किसी के अवगुणों को उठा के अपने दिल में मत रखो, और अपनी पराई चीज को रखना अपने दिल में या अपने बुद्धि में समा लेना तो वो मत बनो, और पुरानी चीजों को इकट्ठा करना उसे क्या कहेंगे, हैं कबाड़ी। तो पुरानी जो बातें भूलो, जो बाबा कहता अभी भी बात हुई ना थोड़ी देर पहले उसको भूल जाओ, फॉरगेट एंड फॉरगिव योर सेल्फ ऑल्सो, अपनी बातें भी भूल जाओ औरों की बातें पुरानी भूल जाओ। सब कहो ये तो क्या सत्युग में आने वाली महान आत्मा है, इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, अब तो भले थोड़ा बहुत कमी बेशी है, ओरिजिनल क्या बनने वाला है, डबल क्राउन किंग, डबल क्राउन देवता तो बनेगा, बताइए। ऐसे देखो ना कबाड़ी बने ना हम नाम चोरी करें, हम बाबा के बच्चे, बाबा के दिल पसंद, सबको संतुष्ट करने वाले, दुआएं लेने वाले ऐसे बाबा के ब्राह्मण बच्चे, कर्मातीत फरिश्ता बन जाएं। यही मारी आपसे ये एक शुभ कामना है, शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। आज वैसे भी भट्टी का लास्ट डे है, तो बाबा मम्मा की इतनी इंस्पायरिंग बातें सुनकर के एक अच्छा पक्का स्टैंप यहाँ से भट्टी से आज सभी लेकर के जाएंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। हम हर एक ध्यान रखें कि हम बाबा के पास आज बैठेंगे, बाबा से पत्र लिखेंगे और पत्र में ये जरूर लिखेंगे कि बाबा हम 3 दिन यहाँ पांडव भवन में आपके साथ साथ रहे तो क्या लेकर के जा रहे हैं उसके लिए थैंक्स करें, और क्या बाबा के पास स्वाहा करके जा रहे हैं उसको सदाकाल के लिए बाबा के पास रख करके जाएं, तो ये पत्र जरूर से 15 मिनट में सभी लिखें, चाहे शांति स्तंभ में बैठे, चाहे बाबा के कमरे में बैठे, चाहे कुटिया में बैठे, लेकिन बाबा से पत्र लिख करके पत्र लेटर बॉक्स में डाल करके फिर रात को गुड नाइट करेंगे। ओम शांति।
तेरी पास